करने में सभी परिजन भावनापूर्वक जुट पड़े तो देखते देखते 1,00,000 का प्रज्ञा संगठन खड़ा होने का स्वप्न साकार हो सकता है। संगठन का दूसरा पक्ष है नारी जागरण, महिला मंडलों का गठन। वे भी आरंभ में 5 और कुछ दिन में 25 की संख्या में विकसित होंगी। पुरुष परिजनों का कर्तव्य हो जाता है कि वे अपने परिवार की, अपने प्रभाव परिष्कार की प्रभावशाली 5 शिक्षित महिलाएं खोज निकालें और उन्हें संगठित, प्रोत्साहित, प्रशिक्षित करते हुए इतना साहस उनमें भरें कि मिलजुल कर अपने प्रभाव क्षेत्र में नारी जागरण की पुण्य परंपरा को परिपूर्ण उत्साह के साथ संपन्न कर सकें। इस प्रकार जहां 1,00,000 पुरुष प्रधान प्रज्ञा मंडलों के गठन का काम सौंपा गया है, दोनों की समानांतर व्यवस्था रहे, दोनों एक दूसरे का समर्थन सहयोग करें परंतु अपनी अपनी सत्ता अलग अलग ही बनाए रहें, इसमें सुविधा और सुरक्षा भी रहेगी। सभी प्रज्ञा मंडलों और महिला मंडलों को क्रिया पक्ष का यह प्रयास सौंपा गया है कि वे साप्ताहिक सत्संगों का क्रम बनाएं। एक नियत स्थान पर या बारी बारी से सदस्यों के घरों पर सत्संग उपक्रम बिना नागा किए चलाते रहें। उसमें आरंभ में दीपयज्ञ का छोटा उपक्रम, गायत्री मंत्र का सामूहिक गान, युग संगीत सहगान की धार्मिक विधाएं संपन्न की जाएं। इसके बाद पारस्परिक विचार विनिमय का क्रम चले, पिछले सप्ताह में किसने क्या किया और अगले सप्ताह किसकी क्या करने की योजना है। इस प्रकार की जानकारियों का आदान प्रदान चल पड़ने पर एक दूसरे को प्रोत्साहन भी मिलेगा, कठिनाइयों की जानकारी और उसके समाधान का तारतम्य भी बैठेगा। प्रभाव परिक्रमा में सत्प्रवृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन की जिम्मेदारी को इसी अवसर पर उठाया और अगले दिनों उसे पूरा करने की प्रतिस्पर्धा में दौड़ लगाया करेंगे। इन साप्ताहिक सत्संगों को नवसृजन योजना पर किया गया निर्धारण भी कहा जा सकता है। इसी साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर प्रज्ञा पुस्तकालयों के माध्यम से युग चेतना को व्यापक बनाने का प्रयास भी जुड़ा रहेगा। दोनों मंडलों के अपने अपने पुस्तकालय इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। सदस्यगणों को एक सप्ताह में जितनी पुस्तकें अपने संबद्ध जनों को पढ़ाने के लिए ले जानी हो, ले जाया करेंगे। इस प्रकार झोला पुस्तकालय वाली वह योजना भी पूरी होती रहेगी जिसमें हर शिक्षित को घर बैठे बिना मूल्य युग साहित्य पढ़ाने और वापस लाने का प्रावधान था। जिसमें अनपढ़ों को पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाया करती थी, अब वह उपक्रम साप्ताहिक सत्संगों में जुड़ जाने और सदस्यों द्वारा अपनी सामर्थ्य भर अपने प्रभाव क्षेत्र में युग चेतना का आलोक वितरण करने का दायित्व नियमित रूप से उठाया जाता रहेगा। काम बंट जाने से वह अधिक भी होगा और सार्थक भी रहेगा। जो जिसे पढ़ाएगा वह उससे संपर्क भी साधेगा और जब घनिष्ठ परिपक्वता बढ़ने लगे तो उन नव परिचितों को प्रस्तुत संगठनों में नियमित से सम्मिलित करने का प्रयत्न किया करेगा। 25 से अधिक सदस्य बढ़ जाने पर उन्हें अलग टोलियों में विभाजित किया जाता रहेगा ताकि व्यवस्था और प्रौढ़ता बनी रहे। एक बहुत बड़ा संगठन बनाने की अपेक्षा छोटे छोटे अनेक बना लेने पर अधिक सुविधा रहेगी और अधिक प्रगति भी होगी। पक्षी समर्थ हो जाने पर माँ बाप वाला घोंसला छोड़कर अपना नया नीड बनाने और नया परिवार बनाने की प्रक्रिया पूरी करता है। इसमें हर्ज कुछ नहीं, लाभ अनेक हैं। इस आधार पर टांग खिंचाई से तो निश्चित रूप से बचा जा सकता है। संगठन का ढांचा खड़ा हो जाने पर उसे अनेक स्तर के 1 प्रचारात्मक, 2 रचनात्मक एवं 3 सुधारात्मक कार्य हाथ में लेने होंगे। इसके लिए जन शक्ति भी चाहिए और साधन जुटाने के लिए धन शक्ति भी। इसके लिए जगह जगह चंदा मांगते फिरने की अपेक्षा अपनी लोगों की श्रद्धा परखी जानी चाहिए कि उसमें बातूनी जमा खर्च ही है या श्रद्धा की गहराई भी जुड़ गई है। इसके लिए हर गठित मंडलों में सम्मिलित होने वाले के लिए सक्रिय योगदान की शर्त रखी गई है, समयदान व अंशदान। दोनों मंडलों के सदस्य अपने संगठनों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियमित योगदान प्रस्तुत करते रहने का संकल्प करें और उसका व्रत धारण की तरह निर्वाह करें। युगऋषि ने नवसृजन के लिए हर भावनाशील से समयदान और अंशदान मांगा है। समयदान कम से कम 1 घंटे प्रतिदिन से लेकर 4 घंटे प्रतिदिन तथा अंशदान आधा कप चाय की कीमत प्रतिदिन से लेकर माह में 1 दिन की आय नियमित रूप से नवसृजन प्रयोजनों में लगाने का आग्रह किया गया है। न्यूनतम 2 घंटे का समयदान और 1 रुपये का अंशदान सभी को करना चाहिए। इतनी न्यूनतम उदारता अपनाना किसी भी भावनाशील के लिए कठिन नहीं पड़ना चाहिए। महत्ता समझने और श्रद्धा का पुट रहने पर इतनी उदारता अपनाना किसी के लिए भारी नहीं पड़ेगा। व्यस्तता और अभावग्रस्तता की बात कहना तो अपनी कृपणता, अनुदारता और उपेक्षा को ढकने का बहाना मात्र है। वस्तुतः कोई भी विचारशील इतना तो कर ही सकता है कि 22 घंटा अपने निजी कार्य के लिए रखकर शेष 2 घंटे इस आपत्तिकाल में युद्धधर्म को निभाने के लिए लगाता रहे। 1 रुपया इस महंगाई के जमाने में 1/4 कप चाय की कीमत है। इसे दे सकने में निर्धन भी असमर्थ नहीं रह सकते। उपर्युक्त ढांचा खड़ा हो जाने पर वे अन्यान्य कार्य सरलतापूर्वक चल पड़ेंगे जिन्हें अगले ही दिनों व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए उठाया जाना है। नारी जागरण की दूरगामी संभावनाएं। भावनाशील प्रतिभाओं को खोजना, एक सूत्र में बांधना और उन्हें मिलजुल कर सृजन के लिए कुछ करने में जुटाना सतयुग की वापसी का शिलान्यास है। इसी के उपरांत नवयुग का, उज्ज्वल भविष्य का भव्य भवन खड़ा हो सकने का विश्वास किया जा सकता है। इसलिए इसे संपन्न करने के लिए इस आड़े समय में किसी प्राणवान को निजी कार्यों की व्यस्तता की आड़ लेकर बगले नहीं झांकनी चाहिए। युग धर्म की इस प्रारंभिक मांग को हर कीमत पर पूरा करना ही चाहिए। इन्हीं दिनों उठने वाला दूसरा चरण है आद्य शक्ति का अभिनव अवतरण नारी जागरण। आज की स्थिति में नारी नर की तुलना में कितनी पिछड़ी हुई है, इसे हर कोई हर कहीं नजर पसार कर अपने इर्द गिर्द ही देख सकता है। उसे रसोईदारिन, चौकीदारिन, धोबिन और बच्चे जनने की मशीन बनकर अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। दासी की तरह जुटे रहने और अन्न वस्त्र पाने के अतिरिक्त और भी महत्वाकांक्षा संजोने के लिए उस पर कड़ा प्रतिबंध है। परंपरा निर्वाह के नाम पर उसे बाधित और प्रतिबंधित रहने के लिए कोई ऐसी भूमिका निभाने की गुंजाइश नहीं है जिससे उसे एक समग्र मनुष्य कहलाने की स्थिति तक पहुंचने का अवसर मिले। नारी के रूप में प्रायः आधी जनसंख्या की यही स्थिति है। प्रायः शब्द का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि उनमें से कुछ सोने की जंजीरों से जकड़ी हैं, तो कुछ लोहे की जंजीरों से। इनमें से कुछ निश्चिंत कहलाती और नौकरी प्राप्त कर लेने, धनी घर की वधू बन जाने जैसे स्तर प्राप्त कर लेती हैं, पर उन्हें भी समग्र मनुष्य जैसा स्वावलंबन कहाँ उपलब्ध है। शेष तो अशिक्षा, अस्वस्थता से ग्रस्त होने के कारण पूरी तरह परावलंबी ही बनी हुई हैं। आपत्तिकाल आ धमकने पर वे अपने बलबूते अपना और बच्चों का भरण पोषण कर सकने में असमर्थ हैं। संसार में आधी जनसंख्या नारी की है। इस वर्ग का पिछड़ी स्थिति में पड़े रहना समूची मनुष्य जाति के लिए एक अभिशाप है। इसे अर्धान पक्षाघात पीड़ित जैसी स्थिति भी कहा जा सकता है। एक पहिया टूटा और दूसरा साबूत हो तो गाड़ी ठीक प्रकार चलने और लक्ष्य तक पहुंचने में कैसे समर्थ हो सकती है। एक हाथ वाले, एक पैर वाले निर्वाह भर कर पाते हैं। समर्थों की तरह बड़े काम सफलतापूर्वक कर सकना उनसे कहां बन पड़ता है। आधी जनसंख्या अंगड़ स्थिति में रहे और दूसरा आधा भाग उसे गले के पत्थर की तरह लटकाए फिरे, तो ऐसी स्थिति में किसी प्रकार समय तो पूरा किया जा सकेगा, किसी महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना बन पड़ना तो दुष्कर ही रहेगा। पिछड़े वर्ग को ऊंचा उठाने की इन दिनों प्रबल मांग है। इसके लिए अनुसूचित जातियों जनजातियों को समर्थ बनाने के प्रयत्न चल रहे हैं। इस औचित्य में एक कड़ी और जुड़नी चाहिए कि हे स्थिति में पड़ी हुई दूसरे दर्जे के नागरिक जैसा जीवन जीने वाली अनेकानेक प्रतिबंधों में जकड़ी हुई नारी को भी एकता और समता का लाभ मिले। इस ओर से आंख बंद किए रहना प्रगति में चट्टान बनकर अड़ा ही रहेगा। अपंग स्तर का व्यक्ति स्वयं कुछ कर नहीं पाता, दूसरों की अनुकंपा पर जीता है, पर यदि उनकी स्थिति अन्य समर्थों जैसी हो जाए तो किसी के अनुग्रह पर रहने की अपेक्षा वह अपने परिकर को अपनी उपलब्धियों से लाद सकता है। जब लेने वाला देने में बदल जाए तो समझना चाहिए कि खाई पटी और उस स्थान पर ऊंची मीनार खड़ी हो गई। आधी जनसंख्या तक स्वतंत्रता का आलोक पहुंचाना और उसे अपने पैरों खड़ा हो सकने योग्य बनाना उस पुरुष वर्ग का विशेष रूप से कर्तव्य बनता है जिसने पिछले दिनों अपनी अहमन्यता की पूर्ति की ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न की। पाप का प्रायश्चित तो करना ही चाहिए। खोदी हुई खाई को पाट कर समतल भूमि भी बनानी चाहिए ताकि उसका उपयुक्त प्रयोग हो सके। नारी जागरण आंदोलन इसी पुण्य प्रयास के लिए उभारा गया है। उसके लिए लेटर पैड, साइनबोर्ड, मजलिस, भाषण, लेखन, उद्घाटन समारोह तो आए दिन होते रहते हैं, पर उस प्रचार प्रक्रिया भर से उतनी गहराई तक नहीं पहुंचा जा सकता जितनी कि इस बड़ी समस्या के समाधान हेतु आवश्यक है। उसके लिए व्यापक जनसंपर्क साधने और प्रचलित मान्यताओं को बदलने की सर्वप्रथम आवश्यकता है। कारण कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक के मन में यह मान्यता गहराई तक जड़ जमा चुकी है कि नारी का स्तर दासी तक ही रहना चाहिए। यही परंपरा है, यही शास्त्र वचन। स्वयं नारी तक ने अपना मानस इसी ढांचे में ढाल लिया है। चिरकाल तक अंधेरे में रहने वाले कैदियों की तरह उसके मन भी प्रकाश के संपर्क में आने का साहस टूट गया है। आवश्यकता प्रस्तुत समूचे वातावरण को बदलने की है ताकि सुधार प्रक्रिया की लीपा पोती न करके उसके जड़ तक पहुंचने और वहां अभीष्ट परिवर्तन कर सकना संभव हो सके। क्रांतिकारी कदम बढ़े देखा गया है कि नारी उत्थान के नाम पर प्रौढ़ शिक्षा, कुटीर उद्योग, शिशु पालन, पाक विद्या, गृह व्यवस्था जैसी जानकारियां कराने में इतिश्री मान ली जाती है। यूं यह सभी बातें भी आवश्यक हैं और किया इन्हें भी जाना चाहिए, पर मूल प्रश्न उस मान्यता को बदलने का है जिसके आधार पर नारी को पिछड़ेपन में बंधी रहने वाली व्यापक मान्यता में कारगर परिवर्तन संभव हो सके, नारी को भी मनुष्य माना जा सके। आज तो लड़के लड़की के दृष्टिकोण का असाधारण अंतर है। लड़की के जनते ही परिवार का मुंह लटक जाता है और लड़का होने पर बधाइयां बंटने और नगाड़े बजने लगते हैं। लड़का कुल का दीपक और लड़की पर आए घर का कूड़ा समझी जाती है। वरपक्ष दहेज की लंबी चौड़ी मांगे करता है और लड़की के अभिभावक विवशता के आगे सिर झुकाकर लुट जाने के लिए आत्मसमर्पण करते हैं। पति के तनिक अप्रसन्न होने पर उन्हें परित्यक्ता बना दिया जाना और रोते कलते जैसे तैसे भला बुरा जीवन जीने की घटनाएं इतनी कम नहीं होती जिनको आज़ादी दी जा सके। दहेज के लिए यातनाएं दिए जाने की कुछ घटनाएं तो अखबारों तक में छप जाती हैं, पर जो भीतर ही भीतर दबा दी जाती हैं, उनकी संख्या छपने वाली घटनाओं से अनेक गुनी अधिक है। पतिव्रत पालन के लिए लौह अंकुश रहता है, पर पत्नी व्रत का कहीं अता पता नहीं। विदुर प्रसन्नतापूर्वक विवाह करते हैं, पर विधवाओं को ऐसी छूट कहाँ। नारियां सती होती हैं, पर नर वैसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते। नारियां घूंघट करके रहती हैं, नाक कान छिदवाकर सज धज के रहने के लिए उन्हें इसलिए बाधित किया जाता है कि वे अपना रमणी कामिनी भोग्या और दासी होने की नियति का स्वेच्छापूर्वक उत्साहपूर्वक मानस बनाए रख सकें। लोकमानस का यह लौह आवरण हटे बिना नारी को नर के समतुल्य बनाने और उन्हें अपनी प्रतिभा का परिपूर्ण परिचय देकर प्रगति पथ पर कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहने का अवसर आखिर कैसे मिल सकता है। आवश्यकता इस लौह आवरण के ऊपर लाखों करोड़ों छेनी हथौड़े चलाने की है ताकि निविड़ बंधनों से जकड़ी आधी जनसंख्या को छुटकारा पाने के लिए उपयुक्त वातावरण बन सके। अपने मिशन का नारी जागरण अभियान इसी गहराई तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है। पत्तों पर जमी धूल को पहुंचकर चिन्ह पूजा कर लेने से तो आत्म प्रवंचना और लोक विडंबना भर बन पड़ती है। नारी जागरण अभियान के लिए जो महिला मंडल गठित किए जा रहे हैं उनका शुभारंभ श्री गणेश तो हल्के फुल्के कार्यक्रम को हाथ में लेकर ही किया जा रहा है, पर यह नवसृजन का भूमि पूजन मात्र है। वस्तु स्थिति अवगत कराने के लिए उस आंदोलन को जन्म देना पड़ेगा जो मानवीय स्वतंत्रता और समता का लक्ष्य पूरा करके ही विराम ले। कहा गया है कि अखंड ज्योति के परिजन स्वयं 5-5 के मंडलों में गठित हों और 5 से 25 बनकर मंडल को पूर्णता तक पहुंचाएं। साथ ही कहा गया है कि वे अपने परिवार तथा संपर्क क्षेत्र में से ढूंढ खोज कर 5 प्रतिभाशाली महिलाओं की एक मंडली बनाएं। वे भी परस्पर संपर्क साधते हुए 5 से 25 बनने का लक्ष्य प्राप्त करें। साप्ताहिक उनके लिए भी उसी प्रकार अनिवार्य किया गया है जैसा कि पुरुषों द्वारा संपन्न किया जाता है। इतना बन पड़ने पर ही यह माना जाएगा कि पुरुषों का एवं नारियों का सतयुग की वापसी के लिए किया जाने वाला प्रयास जड़े पकड़ लिया है। पुरुषों को नैतिक बौद्धिक सामाजिक क्रांति की तैयारी करनी है, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन और सभ्य समाज की संरचना की भी। व्यक्ति परिवार और समाज के तीनों ही क्षेत्रों में सत्प्रवृत्ति संवर्धन और कुरीति उन्मूलन की बहुमुखी प्रवृत्तियों को जन्म देना और मार्गदर्शन करना है। इसके लिए कार्यकर्ताओं की योग्यता और परिस्थितियों की आवश्यकता से तालमेल बिठाते हुए अनेक प्रकार के छोटे बड़े कार्यक्रम हाथ में लिए जाने हैं जिनके लिए आवश्यकता हो या शांतिकुंज के साथ विचार विनिमय भी करते रहा जा सकता है। महिलाओं के लिए साप्ताहिक सत्संगों को सुनिश्चित बनाने के उपरांत शिक्षा संवर्धन आर्थिक स्वावलंबन से संबंधित गृह उद्योग संगीत अभ्यास से मुखर होने और अभिव्यक्तियों को प्रकट कर सकने का अभ्यास कुरीति उन्मूलन के लिए छोटे बड़े आयोजन तथा परिवार निर्माण की समुचित योग्यता प्राप्त करना सभी महिला मंडलों के लिए समान कार्यक्रम बना है। इससे आगे उन्हें ऐसा कुछ कर दिखाना है जिससे मात्र व्यक्तिगत स्थिति ही न सुधरे वरन व्यापक नारी समस्याओं के समाधान के लिए क्षेत्रीय तंत्र खड़े करने का सरंजाम जुटा सकें। असहाय महिलाओं को समर्थ बनाना और उन्हें लोकसेविका बनाने का कार्यक्रम भी इसी योजना को निकट भविष्य में कार्यान्वित किया जाने वाला बड़ा कदम है जो अपने समय पर अपने ढंग से निरंतर उठते रहेंगे गति पकड़ते रहेंगे। हर किसी को समझना और समझाया जाना कि नारी आद्य शक्ति है, वही सृष्टि को उत्पन्न करने वाली अपने स्तर के स्वरूप परिवार का तथा भावी पीढ़ी का सृजन करने में पूरी तरह समर्थ है। 21वीं सदी में उसी का वर्चस्व प्रधान रहने वाला है। नर ने अपनी कठोर प्रकृति के आधार पर पराक्रम भले ही कितना क्यों न किया हो, पर उसी की अहंकारी उद्यमता ने अनाचार का माहौल बनाया है। सृष्टा की इच्छा है कि स्नेह सहयोग सृजन करुणा सेवा और मैत्री जैसी विभूतियों को संसार पर बरसने का अवसर मिले ताकि युद्ध जैसी अनेकानेक दुष्टताओं का सदा सर्वदा के लिए अंत हो सके। इस भवितव्यता को स्वीकार करने के लिए लोकमानस को समझाया और दबाया जाना चाहिए कि वह नारी की समता से नहीं वरिष्ठता से भी लाभान्वित करे। सतयुग की वापसी का शुभारंभ करना वर्तमान जन समुदाय का काम है। ढांचा और तंत्र खड़ा करना सरंजाम जुटाना और वातावरण जुटाना उसी का काम है, पर उन उत्तरदायित्वों को अगली पीढ़ी के ही कंधों को ही उठाना होगा। आज जो पौधे लगाए जा रहे हैं उनके द्वारा विकसित हुए फूलों की शोभा सुषमा को सुरक्षित रखने का कार्य तो वे ही करेंगे जो आज भले ही जन्मे हों जन्मने जा रहे हों पर आवश्यकता के समय तक प्रौढ़ परिपक्व होकर रहेंगे। ऐसी समुन्नत पीढ़ी को जन्म दे सकना तथा सुसंस्कृत बनाना उन नारियों के लिए संभव हो सकेगा जो आज के महान अभ्युदय में भागीदार बनकर नवसृजन की महती भूमिका निभाने में किसी न किसी प्रकार अपनी विशिष्टता का परिचय देगी। आज के नारी जागरण आंदोलन को भविष्य में अतिशय प्रभावित करने वाला बनाना भी इसका एक महान उद्देश्य है। ये मानसून जल थल एक करेंगे। नर्सरियों में उन्नत किस्म की पौधे लगाई जाती हैं। कलम लगाने का कौशल ऐसे पेड़ उत्पन्न करते हैं जो मूल उत्पादन से भिन्न होते हैं। पशु फर्मों में नस्लें सुधारी जाती हैं। खरादी अंगड़ पत्थरों को तराशकर बहुमूल्य हीरे का रूप देते हैं। कीमियागर साधारण धातुओं को जला गला कर संजीवनी रसायनों में परिणत करते हैं। फैक्ट्रियों में कच्चे माल को उपयोगी शक्ल देकर आकर्षक एवं उपयोगी बनाया जाता है। इन्हीं प्रयासों में शांतिकुंज का क्रियाकलाप भी सम्मिलित किया जा सकता है। वह अपने ढंग का एक ऐसा महाविद्यालय है जहां सामान्य जन कुछ पाने की इच्छा से तो आते हैं और लौटने पर वरिष्ठ स्तर का व्यक्तित्व साथ लेकर जाते हैं। युगसंधि की आवश्यकता पूरी कर सकने योग्य प्रतिभाओं को खोजा, ढाला और प्रखर प्रामाणिक बनाकर लौटाया जाता है। लंबे समय से यही एक प्रक्रिया अपने विभिन्न क्रियाकलापों के साथ गतिशील रही है और सराहनीय योग्य सफलता उपलब्ध करती रही है। स्थानीय गतिविधि को बारीकी से निरीक्षण परीक्षण करने पर प्रतीत होता है कि चाहे अनुसंधान हो, चाहे योगशिल्पी प्रशिक्षण, चाहे स्वावलंबन विद्यालय, चाहे जड़ी बूटी अनुसंधान हो, सबके पीछे एक ही उद्देश्य समाहित है कि परिष्कृत स्तर की ऐसी प्रतिभाएं ढाली जाएं, जो अपने को गौरवान्वित करें, लोकनायकों जैसी विशिष्टता संपन्न करें और बदलते युग के अनुरूप अभीष्ट परिवर्तन प्रस्तुत करने के लिए कुछ साहस भरे कदम उठा सकें। इस प्रयोजन के लिए समग्र स्वास्थ्य संवर्धन, दीपयज्ञों द्वारा देश भर में नवचेतना उत्पन्न करने वाले आयोजन, विचार क्रांति के लिए आवश्यक साहित्य सृजन जैसे अनेक छोटी बड़ी गतिविधियों को सहज कार्यान्वित होते देखा जा सकता है। जनमानस का अंतराल लहराने के लिए संगीत शिक्षा को प्रमुखता दी गई है। स्काउटिंग अनुशासन अनिवार्य है। गृहस्थ कार्यकर्ताओं के परिवार जिस रीति नीति को अपनाकर काम करते हैं उसे ब्राह्मण परंपरा का पुनर्जीवन कहा जा सकता है। इस बहुमुखी प्रशिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत समर्थ व्यक्तियों का सृजन और कार्यक्रमों आयोजनों का तारतम्य आपस में गूंथकर एक ऐसा व्यापक वातावरण तैयार कर रहे हैं जिसके प्रभाव से नवयुग के अनुरूप आरंभिक क्रियाकलापों को आवश्यक गति मिल सके। उच्च स्तरीय व्यक्तित्व इस तंत्र के साथ इतनी अधिक संख्या में जुड़े हुए हैं कि उनके परामर्श आवागमन हेतु आवास और भोजन की सुविस्तृत व्यवस्था करनी पड़ती है। भोजनालय में प्रायः 1000 से भी अधिक व्यक्तियों का सहभोज संपन्न होता रहता है। पत्र व्यवहार का अपना विभाग है जिसके अंतर्गत हर महीने हजारों लाखों को घर बैठे आवश्यक प्रकाश परामर्श प्राप्त करते रहने की सुविधा उपलब्ध रहती है। जन जागरण के लिए प्रचार टोलियां विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचती और नवजीवन को उभारने के लिए युग चेतना का प्रकाश वितरण करती हैं। व्यक्ति और समाज के, राष्ट्र और विश्व के सम्मुख उपस्थित अनेकानेक समस्याओं विपन्नताओं का एकमात्र कारण है चिंतन और चरित्र में निकृष्टता का स्तर असाधारण रूप से बढ़ जाना। इसका एकमात्र हल और निराकरण आदर्शवाद की पक्षधर विचार क्रांति से ही संभव हो सकता है। इस प्रकार के सुनियोजित प्रयत्न दूसरी जगह से हुए हैं या नहीं यह तो नहीं कहा जा सकता, पर यह निश्चय है कि शांतिकुंज ने तथ्यों के अनुरूप सुधार परिष्कार की व्यवस्थित योजना बनाई ही नहीं बल्कि कार्यान्वित भी की है। इस प्रयोजन में प्रमुख भूमिका मिशन की मासिक पत्रिकाओं ने निभाई है। उनके लेख पाठकों के अंतराल को छूते और नवसृजन के प्रयास में सम्मिलित होने के लिए उल्लसित करते रहे हैं। पाठकों के साथ जुड़ने वाली घनिष्ठता का ही प्रतिफल है कि उनकी ग्राहक संख्या उसी अवधि में 500 गुनी हो गई और अगले ही दिनों 1000 गुनी होने जा रही है। यह एक अनोखा कीर्तिमान है। प्रचार प्रयोजनों में 500 से अधिक संख्या में छपे युग साहित्य का योगदान है जिनके अनेक संस्करण छपे हैं, अनेक भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। इसके अतिरिक्त दीपयज्ञ जैसे नितांत सस्ते और सर्वसुलभ आयोजनों ने देश के कोने कोने में युग चेतना का व्यापक विस्तार किया है। स्लाइड प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर, झोला पुस्तकालय, आदर्श वाक्य लेखन, स्टीकर आदि ने भी जनमानस को झकझोरने में कम योगदान नहीं दिया है। इन सभी प्रयत्नों को आगे भी इसी उत्साह के साथ जारी रखा जा रहा है ताकि इस युग चेतना का आलोक और भी बड़े क्षेत्र में विस्तृत हो सके। इन दिनों शांतिकुंज के तत्वावधान में दो महान आंदोलनों को उभारा गया है जो देखने में छोटे किंतु परिणाम में दूरगामी प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाले समझे जा सकते हैं। वे गति पकड़ रहे हैं और मत्स्यावतार की तरह अपना कलेवर बढ़ा रहे हैं, तूफान की तरह प्रचंड गतिशीलता अपना रहे हैं, चक्रवातों की तरह तिनकों और पत्तों को जमीन से उछालकर आकाश तक पहुंचाने की क्षमता उनमें है। अगले दिनों देखा जा सकेगा कि इन दोनों ने हिमालय से निकलने वाली गंगा यमुना की तरह सूखी मरुभूमि को शस्य श्यामला बनाया कि नहीं। जहां करो या मरो का लक्ष्य हो, जहां दृष्टि सदा ऊंचे आसमान पर ही जमी रहती हो, वहां असफलता का कोई कारण नहीं, कारण वश थोड़ा विलंब भले लग जाए। सुसंस्कारियों का संगठन और सृजन कृत्यों का संकल्परत होना ही सतयुग की वापसी के नाम से जाना जाने वाला प्रथम आंदोलन है। 5 से 25 बनने की नीति इन्हें सुसज्जित गुलदस्ते का रूप दे रही है। प्रज्ञा मंडल और महिला मंडल इसी के दो पक्ष हैं। दोनों को मिलाकर संगठन की शक्ति दुर्दांत दिखने वाली आसुरी शक्तियों की तुलना में तगड़ी पड़ती है नहीं। इस संबंध में फैले हुए भ्रम का अगले दिनों निराकरण हो सकेगा। सत्य जीतता है, पराक्रम जीतता है, ब्रह्मवर्चस्व जीतता है, इस संकल्प के सार्थक होने की विश्वासपूर्वक प्रतीक्षा की जा सकती है। आद्यशक्ति का पुनर्जागरण नाम से नारी जागरण आंदोलन की लाल मशाल प्रज्वलित की गई है। इसके संगठनात्मक रचनात्मक पक्षों की जानकारी तो लोगों को पहले भी थी, पर अब उनमें एक संघर्षपरक तथ्य और जोड़ा गया है, दहेज जेवर और धूमधाम रहित विवाहों का प्रचलन। कहना न होगा कि खर्चीली शादियों ने हमें दरिद्र और बेईमान बनाया है। उत्पादन बढ़ने पर भी दरिद्रता से पीछा नहीं छूटा, इसका एक बड़ा कारण विवाहोन्माद ही है। इसकी खुमारी में गरीब लोग भी अमीरों जैसा स्वांग बनाते और घर फूंक तमाशा देखते हैं। आंदोलन ने प्रज्ञा परिवार से संबंधित हर विचारशील को बाध्य किया है कि वे नितांत सादगी के साथ शादियां करने की प्रतिज्ञा करें। अभिभावक अपने लड़के लड़कियों पर दहेज न लेने और जेवर न चढ़ाने की प्रतिज्ञा करें। विवाह योग्य किशोर और किशोरियां प्रण करें कि वे इस उन्माद के कुचक्र से कोसों दूर रहेंगे। लालची और प्रतिगामी परिवार वाले यदि दबाव डालेंगे तो अविवाहित रहना स्वीकार करेंगे, पर इस अनीति के आगे सिर न झुकाएंगे जिसने अपने समाज को अविवेकी मूर्जनों का झुंड मात्र बनाकर रख दिया है, जिसने परिवारों की सुख शांति हराम कर दी है, जो अपने देश की आर्थिक बर्बादी का कारण है। ऐसे दहेज दानवों की भेंट चढ़ने की अपेक्षा अविवाहित रहकर जिंदगी गुजारना 1000 गुना अच्छा है। यह बातें कहा सुनी में पिछले दिनों में चर्चा का विषय ही रही हैं, पर उसे अब कार्य रूप में परिणत किया जाएगा। प्रज्ञा परिवार का कोई सदस्य इस अनाचार में भागीदार न बनेगा, अपने प्रभाव क्षेत्र पर इस हेतु दबाव डालेगा और जो न मानेंगे उसके यहाँ ऐसे उत्सवों में सम्मिलित होने के लिए नहीं ही जाएगा। ढुलमुल नीति अपनाने पर किसी की सिद्धांतवादिता तो खरी तो नहीं उतरती। अखंड ज्योति परिवार के 5 लाख और उनसे संबंधित 25 लाख व्यक्ति यदि इस परिवार में इस आंदोलन को शुरू करें तो कोई कारण नहीं कि अन्यत्र भी इसका प्रभाव न पड़े और इस प्रकार के अन्यान्य कुप्रचलनों पर भी कुठाराघात का सिलसिला न चल पड़े। जाति पाति पर आधारित ऊंच नीच, मृतक भोज, भिक्षा व्यवसाय आदि और भी अनेक कुप्रचलन हैं, जिन्हें अगले ही दिनों दहेज के दानव की तरह परास्त करना होगा। गांधी जी का छोटा दिखने वाला नमक सत्याग्रह करो या मरो के रूप में विकराल हुआ था और अनाचार का बिस्तर गोल करके ही रुका था। नारी जागरण आंदोलन की पूर्णता विवाहोन्माद के समापन के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है। इसी के कारण तो नारी को हेय समझा और नर को श्रेय दिया जाता है। दहेज के रहते नारी जागरण की बात सोचना एक दिवास्वप्न जैसा मखौल ही बना रहेगा। सतयुग की वापसी आंदोलन के साथ 2 तथ्य जुड़ते हैं, एक विचारशीलों का संगठन एवं दूसरा है प्रगतिशीलता के पक्षधर वातावरण का प्रचंड वातावरण निर्माण। इसके लिए लोगों में दूरदर्शी विवेकशीलता उभारने के लिए प्रचार प्रक्रिया को तेज करना पड़ेगा। लेखनी, वाणी, संगीत, अभिनय, साहित्य, काव्य, चिंतन आयोजन, समारोह आदि की जितनी विधि व्यवस्थाएं जहां जिस प्रकार बन पड़े वहां उन्हें परिस्थितियों के अनुरूप अपनाया और व्यापक बनाया जाना चाहिए। इन प्रचलनों के सहारे वातावरण झकझोरा और प्रगतिशीलता का पक्षधर बनाया जा सकता है। अभी दोनों आंदोलनों का आरंभ अखंड ज्योति परिवार के परिजनों से हो रहा है, पर वह इतनी छोटी परिधि में सीमित होकर रहने वाला नहीं है। प्रज्ञा परिजनों द्वारा की जा रही यह उछल कूद कुछ ही दिनों में देश की 80 करोड़ जनता, विश्व के 500 करोड़ मनुष्यों के सिर पर जादू की तरह चढ़कर बोलेगी। यह विद्या अपनाने के लिए लोगों को बाधित करेगी, जिसके सहारे विनाश की तमिश्रा हटे और उषाकाल का अरुणोदय, बदलते संसार का संदेश लेकर मुस्कराए। प्रतिभाएं संसार के हर क्षेत्र में मौजूद हैं। धनाढ्यों, शासन अध्यक्षों, कलाकारों, वैज्ञानिकों और मनीषियों को अपने अपने ढंग से काम करते हुए देखा जा सकता है। उनकी प्रखरता और प्रचंडता ने जो कुछ भी भला बुरा बन पड़ा है उसे आश्चर्यजनक सफलता के साथ संपन्न किया है। इन वर्गों को युग चेतना अछूता नहीं छोड़ेगा, उसे झकझोरने और समय के अनुरूप बदलने के लिए बाधित करेगी। अब तक भले ही स्वार्थपरता और प्रमाद को प्रोत्साहित करते रहे हों, पर आगे उन्हें अपनी क्षमता को मोड़ना मरोड़ना और सृजन प्रयोजनों के लिए नियोजित करना होगा। तूफानों, भूकंपों, विस्फोटों, आंदोलनों का उद्गम कहीं भी क्यों ना रहा हो, जब वे गति पकड़ते हैं तो व्यापक बनते चले जाते हैं। राजक्रांतियों का सिलसिला इसी प्रकार चला था और असंख्य राजमुकुट अनायास ही धराशायी होते चले गए। सृजन की भी अपनी लहर है। सतयुग में ऐसा ही प्रभावोत्पादक मानसून उठा होगा, उसने धरती पर मखमली फर्श बिछाते हुए स्वर्ग जैसा वातावरण बनाकर विनिर्मित कर दिया होगा। रात्रि की तमिश्रा सदा नहीं रहती, दिन को भी प्रकट होने का अवसर मिलता है। तब छोटे पक्षी ही नहीं, गजराज भी अपनी चिंघाड़ और वनराज अपनी दहाड़ से दिशाओं को गुंजित करते दिखाई देते हैं। ऐसा न समझा जाना चाहिए कि अखंड ज्योति परिवार ही अपने सृजन प्रयासों तक सीमित रह जाएगा। उमगता युग प्रवाह उन बड़ी प्रतिभाओं को भी अपने साथ लेकर चलेगा जो पिछले दिनों विनाश के जाल जंजाल रचती रही हैं। आत्मिक प्रगति का प्रत्यक्ष प्रमाण, असमर्थों के साथ उदारता बरती और उनकी सहायता की जाती है। बच्चों को सुविधा देने में अभिभावक अपनी अपेक्षा एवं उन्हें प्राथमिकता देते हैं। यह उचित भी है और आवश्यक भी, पर यह भी निश्चित है छोटे बच्चों का विवाह नहीं किया जाता क्योंकि वे पत्नी का दायित्व वहन करने की स्थिति में नहीं होते। इसी प्रकार उन्हें किसी बड़ी प्रतियोगिता में सम्मिलित होने, बड़ा चढ़ा कारोबार संभालने या सेना में भर्ती होने के लिए उत्साहित नहीं किया जाता है क्योंकि असमर्थता के रहते किसी से कोई बड़ा कार्य साधता नहीं। फिर उन्हें बाधित और लज्जित क्यों किया जाए? रोगी, वृद्धा, अपंग, अविकसित भी तो ज्यों त्यों करके अपने दिन काटते हैं। जो अपना भार स्वयं वहन नहीं कर सकते, वे किसी आड़े समय में कोई बड़ा काम कर दिखाने का साहस कहाँ जुटा पाते हैं। कहने और सोचने को तो शेख चिल्ली भी लंबी हांकता था, पर उसका हवाई महल साकार कहाँ हो सका था। नवसृजन एक अतीव महत्वपूर्ण कार्य है, इतना महत्वपूर्ण कि उसके बन पड़ने पर उज्ज्वल भविष्य का प्रारंभ संभव है और न बन पड़ने पर सुरसाओं का समूह इन मुट्ठी भर मनुष्य प्राणियों की सत्ता और महत्ता दोनों को ही उदरस्थ कर सकता है। यह ऐसा समय है जिसे ऐतिहासिक, अभूतपूर्व कहा जा सकता है। इसमें जीवन या मरण में से एक का चयन होना है। डूबने और पार होने में से कोई एक नियति इन्हीं दिनों अवतरित होने वाली है। प्रवाह विनाश की दिशा में बह रहा है, यह हस्तामल का वत स्पष्ट है। तथाकथित प्रगति में अपने छल छडम के सहारे बहुत छीन लिया, यदि निशेबाजी जैसी खुमारी अभी न उतरी तो जो बचा है उसे भी गंवा बैठने का दुर्दिन देखना पड़ सकता है। इसे देव और दैत्य के बीच छिड़ा हुआ घमासान युद्ध भी कह सकते हैं। तमिश्रा सघन और व्यापक है, किंतु ब्रह्म मुहूर्त के उषाकाल ने पूरी तरह हार नहीं मानी है। यह अगले ही दिनों अभिनव अरुणोदय का प्राची में उदय होना सुनिश्चित बताता है। आशा यही की जानी चाहिए कि महाकाल विनाश को निरस्त करने और विकास को प्रश्रय देने वाली योजना को ही समर्थन प्रदान करेंगे, उज्ज्वल भविष्य ही जीतेगा। सतयुग की वापसी वाली संभावना के पीछे अधिक प्राणवान तथ्य हैं। 21वीं सदी में उज्ज्वल भविष्य के सजधज कर आने और सिंहासन पर विराजने का सुयोग बन पड़े तो उसे दिव्यदर्शियों द्वारा अकारण की गई भविष्यवाणी नहीं मानना चाहिए। युगसंधि के लिए इस महाअभियान में सभी दूरदर्शी अपने अपने दृष्टिकोण से योगदान प्रस्तुत करें। दुर्बल नितांत परावलंबी आंतरिक सामर्थ्य के रहते हुए भी सत्य के अवतरित होने की कामना करते रहें तो भी काम चलेगा। प्रतिगामी दुराग्रही अपने हठ और अवरोध को समय को देखते हुए कुछ समय निरपेक्ष रहें और अड़ंगे आदि लगाने से बाज आएं। निहित स्वार्थी को इसलिए शांत रहना चाहिए कि समय परिवर्तन में उनका नाम काली सूची में न लिखा मिले और पराजित प्रतिरोधकर्ताओं की तरह लज्जित न होना पड़े। प्रमुख भूमिका तो उन प्रतिभाओं की रहेगी जिनकी परंपरा ही अनौचित्य को उलट देने में अपनी गरिमा प्रकट करती रही है। इन प्राणवानों की श्रेणी में शामिल होना ही इन दिनों आत्मिक प्रगति का वरिष्ठता का सुनिश्चित प्रमाण माना जाएगा। सुसंस्कारिता संवर्धन के 10 उपक्रम। ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिशोध, आक्रमण, अपहरण जैसी दुष्प्रवृत्तियां संचित कुसंस्कारों की सहायता से सुदृढ़ और चिरस्थायी बनी रहती हैं। वे अपना हठ पूरा करती भी देखी गई, किंतु आदर्शवादी सत्संकल्पों के बारे में ऐसी बात नहीं है। उनका उत्पादन मानसरोवर में उत्पन्न होने वाले मोतियों की तरह जब जब ही प्रकट होता है। तथाकथित स्वजन संबंधियों, मित्र परिजनों का समर्थन न मिलने पर सामान्य लोग पानी के अभाव में सूखने वाले पौधों की तरह सिर झुकाकर हार मान लेते हैं। एकाकी चल पड़ने का साहस दिखाना भी हर किसी के बलबूते का नहीं होता। उस प्रकार के उच्च स्तरीय उदाहरण न मिलने पर असफल रहने की निराशा पनपती है। प्रेरणा के किसी अजस्र स्रोत के साथ भी तो प्रवाह का तारतम्य जुड़ा नहीं होता। ऐसे अनेक कारण हैं जिनमें सदुद्देश्य के लिए उभरी भावनाएं पानी के बुलबुले की तरह कुछ ही समय हलचल में रहती हैं और फिर उदासीनता के गर्त में समा जाती हैं। देखा गया है कि आदर्शवादी उत्साह प्रायः उसी प्रकार ठंडा पड़ता और समाप्त होता रहता है। इस दयनीय स्थिति से छुटकारा पाए बिना किसी से ऐसे श्रेष्ठ काम कदाचित ही बन पड़ते हों जिन्हें आदरणीय कहकर सराहा जा सके। उसका उपचार है किसी समर्थ सत्ता से जुड़ना, उच्च स्तरीय प्रकाश और मार्गदर्शन निरंतर मिलते रहने का तारतम्य बिठाना और ऐसे वातावरण में सम्मिलित होना जहां उच्च स्तरीय गतिविधियों के सूत्र संचालन का उपक्रम स्वाभाविक रूप से सदा बना रहता हो। वातावरण की तरह श्रद्धा को नए सिरे से जगाने वाले धार्मिक कर्मकांडों का भी अपना महत्व है। धरती पर जिस तिस रूप से वर्षा का जल ही भरा पड़ा है, पर घर के पानी, गंगोत्री उद्गम और त्रिवेणी संगम के गंगाजल की अपनी विशेष महत्ता है। स्थान की विलक्षणता और असंख्यों की श्रद्धा का अभिवर्धन मिलकर चमत्कारी प्रतिफल उत्पन्न करता है। पवित्रता, विशिष्टता और भाव प्रेरणा से भरे पूरे स्थानों की अपनी विशेषता एवं दिव्यता है। तीर्थयात्रा का, तीर्थसेवन का प्रचलन इसी आधार पर कार्यान्वित हुआ है। प्रतिज्ञा संस्कारों की अपनी गरिमा है। विवाह यदि बिना देव साक्षी के, जन उपस्थिति के, बिना कर्मकांड के गुपचुप कर लिया जाए तो स्थिरता संदिग्ध ही रहेगी। उपनयन संस्कार दूसरा जन्म है, उसको भी सांस्कृतिक परिवेश में मान्यता मिली हुई है। वानप्रस्थ, संन्यास आदि ऊंचे कदम उठाने वाले भी उस परिवर्तन काल में शास्त्रोक्त क्रियाकृत्य संपन्न करते हैं। प्रतिज्ञाओं को संस्कार भाव भरे वातावरण में संपन्न किया जाए तो उनके निभने की आशा बहुत अधिक बढ़ जाती है। वे कृत्य यदि जीवंत तीरथ में और ज्वलंत प्राण ऊर्जा के सान्निध्य में किए जाएं, तो इस व्रतधारिता की दृढ़ता और असफलता असंदिग्ध रहती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी सुनिश्चित मनोभूमि होने पर कुछ सत्साहस को निश्चय में उतारा जा सकता है, पर यदि मानसिक दुर्बलता और वातावरण की हीनता दृष्टिगोचर हो तो यह अच्छा है कि इसके लिए तीर्थ भूमि में प्रखरता भरे वातावरण में शास्त्रीय अनुशासन में उसे संपन्न किया जाए। इसके लिए शांतिकुंज आश्रम हर कसौटी पर खरा उतरा है। सतयुग की वापसी और आद्यशक्ति अवतरण के योग्य अपना व्यक्तित्व ढालने और प्रयासों को प्रखर करने हेतु कभी 5 दिन के लिए हरिद्वार आना चाहिए और यहाँ रहकर कुछ व्रत साधना करते हुए वह निश्चय करना चाहिए, जिससे अगले दिनों महत्वपूर्ण कदम उठें और उसके लिए अपने प्रसुप्त शक्ति स्रोत उभरें। इस संदर्भ में अब कई प्रयोजनों के लिए व्रतधारण संस्कार निरंतर चलते हैं, इसकी व्यवस्था की गई है ताकि तदनुरूप उत्साह वर्धक वातावरण बना रहे और व्रतधारी अपने में कुछ विशिष्ट परिवर्तन अनुभव करते हुए लौटें। भारतीय देव संस्कृति में पारिवारिक उत्सवों के रूप में संस्कारों और सामूहिक समाज प्रशिक्षण के लिए पर्व त्योहारों का विशेष स्थान है। प्राचीन काल में लोक शिक्षण की महान प्रक्रिया में इन दोनों का प्रमुख स्थान था। भाव भरे वातावरण तथा देव साक्षी के सम्मुख हुए ये आयोजन न केवल संबंधित व्यक्ति पर वरन परिजनों उपस्थित जनों को उस संदर्भ में उद्वेलित करते थे। सुसंस्कारिता अभिवर्धन के लिए सुझाए गए मार्गदर्शन को वे सभी हृदयंगम करते थे और जिसे माध्यम बनाकर यह सब किया गया उसे सफल बनाने में योगदान देने में तत्परता अपनाते थे। इन आयोजनों का स्वरूप ऐसा बन पड़ता था कि उससे भावनाएं उभारने एवं उन्हें सन्मार्ग में लगाने का प्रयोजन असाधारण रूप से सिद्ध होता था। आज उस गरिमा का स्मरण करना भी कठिन पड़ रहा है, क्योंकि अब संस्कारों पर्वों की चिन्ह घटाव पूजा भर होती है। निहित स्वार्थ उनके बहाने दक्षिणा तथा वस्तु सामग्री बटोरने का प्रयत्न करते हैं। पौरोहित्य करने वालों का न तो वैसा स्तर होता है और न विधान के भावना पक्ष का सांगोपांग ज्ञान। सामूहिक आयोजन की भी आवश्यकता नहीं समझी जाती। ऐसी दशा में वे उपेक्षा और उपहास के निमित्त कारण बन गए तो आश्चर्य ही क्या है। नवयुग में उस सार्वभौम सर्वजनीन भाव उन्नयन प्रक्रिया का पुनर्जीवन संभव किया जा रहा है। सतयुग की वापसी के साथ उसे जोड़ा गया है। शांतिकुंज में जिन व्रतधारी संस्कारों को नए सिरे से आरंभ किया गया है वे इस प्रकार हैं। 1. जन्मदिवसोत्सव, मनुष्य जन्म की महान महिमा अनुभव करना, उसके सदुपयोग की बात सोचना, शेष जीवन की सुनिश्चित विधि व्यवस्था बनाकर हर वर्ष नए जीवन को अधिक ऊंचा निर्धारण करना। 2. बाल संस्कार, बच्चों के नामकरण, अन्नप्राशन, विद्यारंभ आदि संस्कारों के अवसर पर अभिभावकों को, हर परिवार वालों को यह बोध कराना कि नए अभ्यागतों को हर दृष्टि से श्रेष्ठ समुन्नत बनाने के लिए संबंधित व्यक्तियों के क्या कर्तव्य हैं, इन्हें पूरा करने के लिए समुचित ध्यान दिलाना। 3. पुंसवन संस्कार, गर्भावस्था के आरंभिक दिनों में ही पति पत्नी तथा संबंधित परिवार के लोगों को बोध कराना कि नवजात शिशु के लिए उसके आगमन से पूर्व किन तैयारियों में जुटना और आगंतुक को एक श्रेष्ठ विश्व नागरिक के रूप में कैसे विकसित करना। 4. उपनयन, पशु प्रवृत्तियों से ऊंचे उठकर देव जीवन में प्रवेश करने का अनुबंध, दूसरे जन्म की अवधारणा का क्रियान्वयन। उपनयन के साथ जुड़े हुए 9 सूत्रों का, 9 मानवीय गुणों की अवधारणा के लिए अनवरत प्रयास को प्रोत्साहन। 5. विवाह दिवसोत्सव, विवाह के समय अनुबंध का हर वर्ष नवीनीकरण, विवाह के साथ जुड़े हुए उच्च स्तरीय सिद्धांतों का पुनः स्मरण। अब तक प्रमाद किया गया है तो उसे विस्मृत करते हुए इस प्रकार का दाम्पत्य जीवन निर्धारण जो हर किसी के लिए हर प्रकार श्रेयस्कर बन सके। 6. श्राद्ध तर्पण, वंशधर पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन, संसार के दिवंगत महामानवों का अनुयायी बनने के लिए अभिनव स्फुरन, उन्हें प्रतिदिन प्रदान करने के दायित्व का स्मरण और उसे चरितार्थ करने के लिए साहस का संजोना, पूर्वजों की कीर्ति स्मरण करते हुए उसे अक्षुण रखने के लिए वृक्षारोपण जैसे कुछ नियम निर्धारण, उनकी छोड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करना, उनकी तृप्ति के लिए परमार्थ परक उदारता का प्रदर्शन, उपर्युक्त छह संस्कार व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन को प्रभावित करते हैं, समाज पर भी उनका उपयोगी प्रभाव पड़ता है। इससे आगे के शेष चार संस्कार वे हैं जिनका सतयुग की वापसी और नारी जागरण से सीधा संबंध है। सेवन व्रतधारी प्रज्ञा मंडल के नव निर्माता पांच सदस्यों को कर्तव्य और संकल्प की दृढ़ता बनाए रखने के लिए व्रत धारण। यही निर्धारण नव गठित महिला मंडलों पर भी लागू होता है। इस प्रयास में संलग्न होने वाली महिलाएं भी अपने भावी कदम नियमित रूप से उठाते रहने का संकल्प लें। इस संकल्प के आधार पर ही वे व्रतधारी कहलाते हैं। इस प्रकार की शपथ लेने पर आदर्शवाद की ओर बढ़ने का हौसला बढ़ता है। आठ आदर्श विवाह संस्कार। देखा गया है कि इन दिनों विवाह संस्कारों में धूमधाम, प्रीतिभोज, जेवर दहेज का समावेश न रहने से पड़ोसी संबंधी उपहास उड़ाते और अड़ंगा लगाते हैं। उनका जो लोग सामना नहीं कर सकते, वे दोनों पक्ष के पांच पांच परिजन एवं वयस्क वर वधु को लेकर शांति कुंज चले आए। उनके विवाह संस्कार यहाँ बिना किसी प्रकार का सरंजाम जुटाए अत्यंत सादगी के साथ संपन्न हो जाते हैं। नाइन प्रायश्चित संस्कार। कर्मों का फल भोगना एक अनिवार्यता है। संचित दुष्कर्म यदि चेतना पर जमे रहें तो हर प्रकार की प्रगति में वे बाधक बनते हैं और शरीरगत मनोरोग उत्पन्न करते रहते हैं। उनका परिशोधन इसी प्रकार हो सकता है कि खोदी गई खाई को पाटा जाए। दुष्कार्यों को बदलने के लिए नए सिरे से सत्कार्यों का आयोजन करके उस संचित कुसंस्कारों से मुक्त हुआ जाए। यह अंत क्षेत्र की एक बड़ी बाधा का महत्वपूर्ण निराकरण है। 10. वानप्रस्थ पारिवारिक उत्तरदायित्व हल्का होने पर मनुष्य को शेष शक्ति सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए नियोजित करके विश्व समस्याओं के समाधान में अनुकरणीय भूमिका निभानी चाहिए। नव निर्माण के उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए अपने को खपाना चाहिए। ये 10वें संस्कार हैं जिन्हें करने कराने वाले हर भावनाशील को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह उपक्रम स्थानीय व्यवस्था में न बन पड़ते हों तो इस हेतु शांति कुंज आते रहने की तैयारी करनी चाहिए और उपर्युक्त संस्कारों में से हर संस्कार यहाँ कराए जाने पर उतना प्रभावी बन पड़ता है कि घर गांव में वैसा बन पड़ना शायद ही संभव हो सके। इस अभिनव व्यवस्था के लिए शांति कुंज में नए सिरे से नई तैयारी की गई है और सभी परिजनों को एक बार इन प्रयोजनों हेतु हरिद्वार आने की तैयारी करने के लिए कहा गया है। इन संस्कार आयोजनों के साथ व्रतधारी प्रज्ञापुत्र बनने की परिपक्वता, सतयुग की वापसी के लिए युगांतरीय चेतना का विस्तार, आद्यशक्ति के अवतरण हेतु नारी पुनरुत्थान का प्राणवान आंदोलन, खर्चीली शादियों का समग्र उन्मूलन जैसे चार महान प्रयोजन जुड़ते हैं। इन्हें अपने जीवन में, परिवार में कार्यान्वित करने के लिए उन प्रखर प्रेरणाओं की पौध शांति कुंज से ले जाई जाए तो उसके अधिक फलित होने की संभावना रहेगी। जिनका यहाँ तक आ सकना संभव न हो, वे इन्हीं कदमों को अपने यहाँ भी उठा सकते हैं। स्पष्ट है कि इन आयोजनों में से किसी जाति संप्रदाय का, नर नारी का कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। अभ्युदय तो हर किसी का होना चाहिए। प्रतिभा की प्रखरता तो हर किसी में प्रकट होनी चाहिए। सामूहिक रूप से जन जागरण सत्प्रवृत्ति संवर्धन के रचनात्मक क्रियाकलाप आरंभ करने के लिए पर्व त्योहारों को समारोह पूर्वक मनाए जाने का अपना महत्व है। यदि सही रूप में, सही रीति से उन्हें एकजुट होकर मनाया जा सके तो उस प्रयास से भी युग सृजन का समन्वय चमत्कार उपस्थित कर सकता है। कठिनाइयां यह हैं कि विभिन्न क्षेत्रों, वर्गों, संप्रदायों, देशों में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न त्योहारों की परंपरा प्रचलित है। यदि सभी वर्गों के प्रमुख त्योहारों को लेकर एक सर्वजनीन व्यवस्था हो सके तो उस आधार पर भी एकता और समता की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ सकती है। ध्यान में यह तथ्य भी रहना चाहिए, जहां तक भारतीय संस्कृति का संबंध है उसमें अनेकानेक त्योहार बिखरे मिलते हैं। यदि इन्हें संवेद करना संभव हो तो इसके लिए प्रभावशाली लोगों को वैसी योजना बनानी चाहिए। उत्तर भारत के अनेक त्योहारों में से प्रमुख छांटे जा सकते हैं। वे हैं 1. दीपावली अर्थव्यवस्था के लिए, 2. वसंत पंचमी शिक्षा संवर्धन के लिए, 3. होली स्वच्छता के लिए, 4. गुरु पूर्णिमा अनुशासन के लिए, 5. श्रावणी स्नेह सहकार के लिए, 6. विजय दशमी शक्ति संवर्धन के लिए हो सकते हैं। इन्हें कैसे मनाया जाए इसका शांति कुंज का अपना निर्धारण है। संपर्क में आने वाले देख लें और सुधार के लिए सुझाव दें। पिछले दिनों किए हुए दुष्कर्म कुसंस्कार बनकर मानस पर छाए रहते हैं और अनेक रोग शोक उत्पन्न करते रहते हैं। उन्हीं अवरोधों के कारण न तो प्रतिभा परिष्कृत होती है, न व्यक्ति निखरता है और न भविष्य उज्ज्वल बनता है। इसलिए आत्मबल बढ़ने के लिए संचित पापों का परिमार्जन करना आवश्यक हो जाता है। यही प्रायश्चित विधान है। तपश्चर्या या संयम साधना भी इसी को कहते हैं। इसका विधान है कि जितनी खाई खोदी है उतनी मिट्टी डालकर बराबर करना, पापों के अनुरूप पुण्य कृत्यों को कर गुजरने के लिए सहायक कदम उठाया जाना, प्रतिभा परिष्कार इस माध्यम से सशक्त सत्ता के साथ जुड़ना, तादात्म्य स्थापित करना, एकीभूत होना होता है। ईंधन समर्पण के माध्यम से अग्नि बन जाता है। नाले का विलय उसे गंगा के समतुल्य बना देता है। विशाल टंकी के साथ जुड़ा हुआ नल सदा भरपूर पानी देता रहता है। पावर हाउस का संपर्क घर के साथ जुड़ने पर पंखे एवं बल्ब बराबर जलते रहते हैं। आत्मदृष्टि के साथ अपने को घनिष्ठता पूर्वक जोड़ लेना दीक्षा कहलाती है। इस आलोक के आधार पर पारस को छूकर लोहा सोना बनने का उदाहरण प्रस्तुत करता है। चंदन के समीपवर्ती झाड़ झंखाड़ भी सुगंधित बन जाते हैं। स्वाति की बूंद धारण करने से सीप में मोती उत्पन्न होता है। श्रद्धा और विश्वास की साधना के साथ जो दीक्षा ग्रहण की जाती है वह प्राण प्रत्यावर्तन जैसे नव जीवन का चमत्कार उत्पन्न करती है। प्रायश्चित और दीक्षा के विधानों को संपन्न कर लेना आत्मिक परिष्कार का प्रमुख आधार है। इन दोनों उपक्रमों के लिए पिछले घटनाक्रम वर्तमान के स्वरूप और भावी निर्धारण के साथ तालमेल बिठाते हुए किस प्रकार क्या किया जाना है, इस संबंध में किसी प्रामाणिक एवं अनुभवी महापुरुषों से आवश्यक परामर्श कर लेना चाहिए। शांतिकुंज को भी ऐसे विचार विनिमय में साझीदार बनाया जा सकता है। युग ऋषि ने जिस ईश्वरीय योजना, युग निर्माण योजना को मूर्त रूप देने का अभियान चलाया है, उसे किसी एक संस्था या संगठन तक सीमित नहीं रखा जा सकता। उसमें तो इस युग में कार्यरत हर प्रतिभावान एवं प्रत्येक सृजनशील सुधारवादी संगठन की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिकाएं रहेंगी। देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार युग निर्माण के सूत्र सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने का क्रम चलता रहेगा। अतः इस हेतु सभी प्रतिभाओं को अपनी अपनी भूमिका चुनने के लिए प्रेरित किया गया है। शांतिकुंज का परामर्श सहयोग उन सबके लिए खुला रहेगा। प्रस्तुत पुस्तक को ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने एवं पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का अनुरोध है। प्रकाशक एस्टरिस्क 1988-90 तक लिखी पुस्तकें क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तकमाला पूजीरो गुरुदेव के जीवन का सार हैं, सारे जीवन का लेखा जोखा हैं। 1940 से अब तक के साहित्य का सार हैं। इन्हें लागत मूल्य पर छपवाकर प्रचारित प्रसारित करने की सभी को छूट है। कोई कॉपीराइट नहीं है। प्रयुक्त आंकड़े उस समय के अनुसार है। इन्हें वर्तमान के अनुरूप संशोधित कर लेना चाहिए। अपने अंग अवयवों से परम पूज्य गुरुदेव द्वारा सूक्ष्मीकरण से पहले मार्च 1984 में लोकसेवी कार्यकर्ता समयदानी समर्पित शिष्यों को दिया गया महत्वपूर्ण निर्देश। यह पत्रक स्वयं परम पूज्य गुरुदेव ने सभी को वितरित करते हुए इसे प्रतिदिन पढ़ने और जीवन में उतारने का आग्रह किया था। यह मनोभाव हमारी तीन उंगलियां मिलकर लिख रही हैं। पर किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि जो योजना बन रही है और कार्यान्वित हो रही है उसे प्रस्तुत कलम, कागज या उंगलियां ही पूरा करेगी। करने की जिम्मेदारी आप लोगों की, हमारे नैष्ठिक कार्यकर्ताओं की है। इस विशालकाय योजना में प्रेरणा ऊपर वाले ने दी है। कोई दिव्य सत्ता बता या लिखा रही है। मस्तिष्क और हृदय का हर कण कण जर्रा जर्रा उसे लिख रहा है। लिख ही नहीं रहा है, वरन इसे पूरा कराने का ताना बाना भी बुन रहा है। योजना की पूर्ति में न जाने कितनों का, कितने प्रकार का मनोयोग और श्रम, समय, साधन आदि का कितना भाग होगा। मात्र लिखने वाली उंगलियां न रहें या कागज कलम चुक जाएं, तो भी कार्य रुकेगा नहीं, क्योंकि रक्त का प्रत्येक कण और मस्तिष्क का प्रत्येक अणु उसके पीछे काम कर रहा है। इतना ही नहीं, वह दैवी सत्ता भी सतत सक्रिय है, जो आंखों से न तो देखी जा सकती है और न दिखाई जा सकती है। योजना बड़ी है, उतनी ही बड़ी जितना कि बड़ा उसका नाम है युग परिवर्तन। इसके लिए अनेक वरिष्ठों का महान योगदान लगना है। उसका श्रेय संयोगवश किसी को भी क्यों न मिले। प्रस्तुत योजना को कई बार पढ़ें, इस दृष्टि से कि उसमें सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का होगा जो इन दिनों हमारे कलेवर के अंग अवयव बनकर रह रहे हैं। आप सबकी समन्वित शक्ति का नाम ही वह व्यक्ति है जो इन पंक्तियों को लिख रहा है। कार्य कैसे पूरा होगा, इतने साधन कहाँ से आएंगे, इसकी चिंता आप न करें। जिसने करने के लिए कहा है वही उसके साधन भी जुटाएगा। आप तो सिर्फ एक बात सोचे कि अधिकाधिक श्रम व समर्पण करने में एक दूसरे में कौन अग्रणी रहा। साधन, योग्यता, शिक्षा आदि की दृष्टि से हनुमान उस समुदाय में अकिंचन थे। उनका भूतकाल भगोड़े सुग्रीव की नौकरी करने में बीता था, पर जब महती शक्ति के साथ सच्चे मन और पूर्ण समर्पण के साथ लग गए तो लंका दहन, समुद्र छलांगने और पर्वत उखाड़ने का, राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाए फिरने का श्रेय उन्हें ही मिला। आप लोगों में से प्रत्येक से एक ही आशा और अपेक्षा है कि कोई भी परिजन हनुमान से कम स्तर का न हो, अपने कर्तृत्व में कोई भी अभिन्न सहचर पीछे न रहे। काम क्या करना पड़ेगा, यह निर्देश और परामर्श आप लोगों को समय समय पर मिलता रहेगा। काम बदलते भी रहेंगे और बनते बिगड़ते भी रहेंगे। आप लोग तो सिर्फ एक बात स्मरण रखें कि जिस समर्पण भाव को लेकर घर से चले थे, पहले लेकर आए थे, हमसे जुड़े थे, उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहे, कहीं राय रत्ती भी कमी न पड़ने पाए। कार्य की विशालता को समझें। लक्ष्य तक निशाना न पहुंचे, तो भी वह उस स्थान तक अवश्य पहुंचेगा, जिसे अद्भुत, अनुपम, असाधारण और ऐतिहासिक कहा जा सके। इसके लिए बड़े साधन चाहिए, सो ठीक है, उसका भार दिव्य सत्ता पर छोड़ें। आप तो इतना ही करें कि आपके श्रम, समय, गुण, कर्म, स्वभाव में कहीं भी कोई त्रुटि न रहे। विश्राम की बात न सोचे, अहनिश एक ही बात मन में रहे कि हम इस प्रस्तुतिकरण में पूर्ण रूपेण खपकर कितना योगदान दे सकते हैं, कितना आगे रह सकते हैं, कितना भार उठा सकते हैं। स्वयं को अधिकाधिक विनम्र, दूसरों को बड़ा माने, स्वयं सेवक बनने में गौरव अनुभव करें, इसी में आपका बड़प्पन है। अपनी थकान और सुविधा की बात न सोचें, जो कर गुजरे उसका अहंकार न करें, वरन इतना ही सोचें कि हमारा चिंतन, मनोयोग एवं श्रम कितनी अधिक ऊंची भूमिका निभा सका, कितनी बड़ी छलांग लगा सका। यही आपकी अग्नि परीक्षा है, इसी में आपका गौरव और समर्पण की सार्थकता है। अपने साथियों की श्रद्धा व क्षमता घटने न दें, उसे दिन दूनी रात चौगुनी करते रहें। स्मरण रखें कि मिशन का काम अगले दिनों बहुत बढ़ेगा, अब से कई गुना अधिक। इसके लिए आपकी तत्परता ऐसी होनी चाहिए जिसे ऊंचे से ऊंचे दर्जे की कहा जा सके। आपका अंतराल जिसका लेखा जोखा लेते हुए अपने को कृतकृत्य अनुभव करे। हम फूले न समाएं और प्रेरक सत्ता आपको इतना घनिष्ठ बनाए जितना कि राम पंचायत में छठे हनुमान भी घुस पड़े थे। कहने का सारांश इतना ही है, आप नित्य अपनी अंतरात्मा से पूछें कि जो हम कर सकते थे उसमें कहीं राय रत्ती त्रुटि तो नहीं रही, आलस्य प्रमाद को कहीं चुपके से आपके क्रियाकलापों में घुस पड़ने का अवसर तो नहीं मिल गया, अनुशासन में व्यतिरेक तो नहीं हुआ, अपने कृत्यों को दूसरे से अधिक समझने की अहंता कहीं छद्म रूप में आप पर सवार तो नहीं हो गई। यह विराट योजना पूरी होकर रहेगी, देखना इतना भर है कि इस अग्नि परीक्षा की वेला में आपका शरीर, मन और व्यवहार कहीं गड़बड़ाया तो नहीं। ऊंचे काम सदा ऊंचे व्यक्तित्व करते हैं, कोई लंबाई से ऊंचा नहीं होता, श्रम, मनोयोग, त्याग और निरहंकारिता ही किसी को ऊंचा बनाती है। अगला कार्यक्रम ऊंचा है, आपकी ऊंचाई उससे कम न पड़ने पाए, यह एक ही आशा, अपेक्षा और विश्वास आप लोगों पर रखकर कदम बढ़ रहे हैं। आप में से कोई इस विषम वेला में पिछड़ने न पाए जिसके लिए बाद में पश्चाताप करना पड़े। पम 0 श्रीराम शर्मा आचार्य, मार्च 1984। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, युग निर्माण का सत्संकल्प नित्य दोहराना चाहिए। स्वाध्याय से पहले इसे एक बार भावना पूर्वक पढ़ना और तब स्वाध्याय आरंभ करना चाहिए। सत्संगों और विचार गोष्ठियों में इसे पढ़ा और दोहराया जाना चाहिए। इस सत्संकल्प का पढ़ा जाना हमारे नित्य नियमों का एक अंग रहना चाहिए तथा सोते समय इसी आधार पर आत्मनिरीक्षण का कार्यक्रम नियमित रूप से चलाना चाहिए। 1. हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। 2. शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। 3. मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। 4. इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। 5. अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। 6. मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। 7. समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। 8. चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। 9. अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। 10. मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। 11. दूसरों के साथ वह व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। 12. नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। 13. संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। 14. परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। 15. सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। 16. राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। 17. मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। 18. हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।